प्रिय भक्तजन, भाइयों बहनों एवं बच्चों, संघ महिलाओं, सदस्यों, आज हम गीता अध्याय 7 का 6वां श्लोक पढ़ते हैं। कल हमने गीता के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक का स्वाध्याय किया था, अर्थ भी पढ़ा था। वो जाना था कि एक परा प्रकृति होती है, एक अपरा। अपरा प्रकृति जो है ये जगत है, जो पांच तत्वों के संयोग से। पांच तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इनके साथ जब मन बुद्धि अहंकार जुड़ जाता है तो ये अपरा कहलाता है। और परा जो है वो जीव है, आत्मा है। जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो इस संसार की उत्पत्ति होती है। आज मैं गीता अध्याय 7 का अगला श्लोक पढ़ती हूँ। भूमि भूतानि सर्वाणि तु अधारे अहम कृतन्नस्य जगता प्रभुवा पल्लेश तथा। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा, इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभु, पैदा करने वाला तथा पहले हूँ, नाश करने वाला हूँ। अनंत ब्रह्मांडों में स्थावर जंगम, थलचर जलचर, नवचर जलायु, अंडर स्वेगत, उद्भिद, मनुष्य, देवता, गंधर्व, पितर, पशु, पक्षी, को कीट पतंग आदि जितने भी प्राणी देखने सुनने में आते हैं, वो सब प्राण दोनों के मानी दृष्टियों से ही उत्पन्न होते हैं। ये तो आपको याद हो गया होगा, क्योंकि कल भी हमने इस पर स्वाध्याय किया था। अपरा और परा का संयोग ही संपूर्ण संसार का बीज है। मैं संपूर्ण जल का प्रभु तथा पले हूँ, इससे भगवान का तात्पर्य है कि मैं ही संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाला हूँ और मैं ही उत्पन्न होने वाला हूँ। मैं स्वयं उत्पन्न होते भगवान, देखो कैसे अनोखी बात है, जो भगवान उत्पन्न भी करता है और स्वयं उत्पन्न हो जाता है। मतलब सब कुछ भगवान ही है। मैं ही नाश करने वाला हूँ और मैं ही नष्ट होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे स्वयं संसार का कोई भी कारण तथा कार्य नहीं है, मैं ही उसका नियत तथा उपादान कारण भी हूँ। गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक को देखिए। मता पर तरम नित कंते दस्ते धनंजय, मेरी सर्व इदम प्रोतम सुत मणि गणा जीव। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। कितना सुंदर भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि देखिए सूत का धागा है और जो मणियां बनाई है मोती, वो भी सूत के बनाए हैं, फिर उसको सूत के धागे में उनको पिरो दिया है, तो फिर वो सूत ही सूत है। ऐसे ही यह संसार मुझ में ही ओतप्रोत है, मैं ही सूत हूँ, मैं ही मोती हूँ। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई हो तो उनमें सूत के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, ऐसे ही मणि रूप अपरा प्रकृति और धागा रूप परा प्रकृति दोनों में एक ही भगवान ही परिपूर्ण है, अर्थात एक भगवान के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। तात्विक दृष्टि से देखें तो ना धागा है ना मणि है, परंतु एक सूत रुई ही है। इसी तरह ना परा है ना परा है, प्रत्येक परमात्मा ही है। अब देखिए वो गहरे गहन में जाके भगवान कहते हैं कि सूत किसका बना? कपास का बना। मणियां किसकी बनी? वो भी कपास की बनी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना मणियां है ना धागा है, क्या है, सूत ही सूत है। इसलिए भगवान कहते हैं ना वो पांच तत्व है, ना बुद्धि अहंकार है, मन बुद्धि अहंकार है, और ना ही जीव है, जो कुछ है वो मैं ही हूँ। अब आगे हम आठवां श्लोक पढ़ते हैं, रसो हम मत्सु कुंतया प्रभास्मि शशि सूर्य हूँ तन्वा सर्वभूतेषु शब्देखे पुरुषम ईशु। हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रण ओंकार, आकाश में शब्द, मनुष्य में पुरुष मैं हूँ। सृष्टि की रचना में भगवान ही कर्ता होते हैं, भगवान ही कारण होते हैं, भगवान ही कार्य होते हैं। इस दृष्टि से रस तन्मात्रा, वो जल, प्रभा, चंद्र, सूर्य, ओंकार, वेद, शब्द तन्मात्रा, आकाश, पुरुषत्व, मनुष्य, ये सब के सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही है। बहुत अच्छा श्लोक है। तो भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, जो कुछ हमें दिख रहा है, चाहे वो पराका है चाहे अपराका है, वो भगवान ही है। पुण्य गंधा पृथ्व्याम चा तेजस्मी विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्चास्मी तपस्विषु। पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ और अग्नि में तेज मैं हूँ, तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूँ, और तपस्वियों में तपस्या मैं हूँ। दसवां श्लोक, बीजम माम सर्वभूतानं विद्धि पाद सनातनम बुद्धि बुद्धि मतामस्मि तेजस तेजस बिना नाम हूँ। हे पृथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान, बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। बीज और प्राणी, बुद्धि और बुद्धिमान, तेज और तेजस्वी, ये सब के सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही है। अनंत अलग अलग ब्रह्मांड है, उनमें अनंत अलग जीव है, और तो संपूर्ण जीवों का बीज एक ही परमात्मा है। एक ही परमात्मा से अनेक प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं। लौकिक बीज तो वृक्ष उत्पन्न करके सब नष्ट हो जाता है, पर अनंत सृष्टियों उत्पन्न होने पर भी परमात्मा रूपी बीज जो कांति हो रहता है। भगवान कहते सब एक वस्तु का, अनंत ब्रह्मांडों का बीज मैं हूँ। पर लौकिक बीज में क्या अंतर है कि जब लौकिक बीज हम बीजते हैं तो वो बीज नष्ट हो जाता है, और वृक्ष बनने पर और खुद वृक्ष में और कई बीज लगते हैं। पर इस सृष्टि में उत्पन्न करने वाला परमात्मा रूपी बीज जो है वो कभी नष्ट नहीं होता। अगला श्लोक है ग्यारहवां, बलम बला बताम चाहम काम रागा विवर्चिता धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भक्त शरण। हे भक्त वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूँ, और प्राणियों में धर्म से अभिरुद्ध धर्म युक्त काम मैं हूँ। सात्विक बल और बलवान, धर्म युक्त काम और प्राण, ये सब के सब एक भगवान ही है। लेकिन भगवान है तो भगवान, काम भी भगवान है, लेकिन फिर भी इसको क्या कहा कि ये त्याज्य है, ग्राया नहीं है, क्योंकि तामसी बल और धर्म विरुद्ध काम के परिणाम स्वरूप दुख, पीड़ा, संताप, नरक आदि के रूप में भगवान मिलते हैं, जो किसी को भी अभिष्ट नहीं। एक और तो भगवान कहते सब कुछ मैं ही, लेकिन दूसरी ओर कहते हैं जो धर्म विरुद्ध काम है, जो धर्म विरुद्ध काम या अलग कोई बातें हैं, वो सब कुछ है तो भगवान ही, परंतु उससे क्या होगा, उससे दुख होगा, संताप होगा, पीड़ा होगी, नरक मिलेगा, तो इसलिए हमें ये अभीष्ट नहीं है। एक चैव सात्विका भाव राजस तामस ये मत रेपी तन विद्धि ना तो हम तेषु तेमी। जितने भी सात्विक भाव हैं, तो जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं, ये सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें मुझ में नहीं है। अब हम आते हैं गीता के बारे में श्लोक पर, सातवें अध्याय के बारे में श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, कहते हैं कि जितने भी सात्विक राजस तथा तामस भाव है मुझ में होते हैं, वो कौन कौन से है, तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और ये तीनों भगवान कहते वो से ही होते हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ, अभी मुझ में नहीं है, मतलब पहले तो उनसे होते हैं भगवान से, तो भगवान से वो लिप्त तो नहीं, भगवानों में लिप्त तो नहीं है, हम तो लिप्त है ना, लेकिन भगवान लिप्त तो नहीं है। श्री मन बुद्धि से जो सात्विक राजस तथा तामस भाव क्रिया पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं, जैसे भगवान ही है, मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि सात्विक राजस तथा तामस भावों की ओर ना जाकर भगवान की ओर जानी चाहिए, इसलिए भगवान कहते हैं कि ये भाव जो है तीनों, ये सब भगवान ही है, भाव तो है भगवान ही है, परंतु वे भगवान में नहीं है, मैं उनसे नहीं लिप्त है, इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक साधक मेरी ओर ध्यान दे, इन गुणों में ना फंस जाए, क्योंकि अगर मनुष्य इन तीन गुणों में से किसी एक गुण में से भी लिप्त हो जाता है तो वो भगवान तक नहीं पहुंच पाता है। संपूर्ण सात्विक राजस और तामस भाव भगवत स्वरूप है, ये सिद्ध पुरुषों की दृष्टि है, और भगवान उनमें और वे भगवान में नहीं है, ये साधकों की दृष्टि है। ये गुण मय भाव ही सर्व इदम जगत मोहितम नारी जाना की मामे परम अभ्यम, गीता श्लोक है ये, किंतु उन तीनों गुण भावों से मोहित ये संपूर्ण जगत इन गुणों से अतीत और अविनाशी मुझे नहीं जानता। क्या कहते हैं भगवान कि जो मनुष्य भगवान को ना देखकर गुणों को देखते हैं, अर्थात गुणों को स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, वे गुणों से मोहित हो जाते हैं, गुणों से मोहित मनुष्य गुणातीत परमात्मा को नहीं जान सकता, भगवान गुणातीत है और मनुष्य इन तीनों गुणों से निर्मित है, इसलिए मनुष्य गुणातीत परमात्मा को नहीं पहचान सकते हैं। परमात्मा का अंश होने से जीव आत्मा भी गुणातीत है, तथा ये गुणों को सत्ता और नेता दोनों नेता देने से वे अभी गुण में जगत बन जाता है, तो जीवात्मा भी क्या है, गुणातीत है, क्योंकि जो आत्मा है वही तो परमात्मा है, अगर भगवान गुणातीत है तो जीवात्मा भी गुणातीत है, लेकिन इस संसार में हम जब बन जाते हैं तो हम गुण में जगत बन नहीं रह जाते हैं, इसलिए श्लोक में जीवात्मा को जगत कहा गया है, जगत बना हुआ जीवात्मा शरीर संसार को मैं मेरा और मेरे लिए मान लेता है। इस अध्याय सात में के चौदहवें श्लोक को हम बोलते हैं अब, देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपदंते माया में ताम तरंती ते, क्योंकि मेरी ये गुणमयी देवी माया दुरत्या है, इससे पार पाना बड़ा कठिन है, जो केवल मेरे ही शरण होते हैं भी इस माया को कर जाते हैं। जो सुंदर श्लोक है कि मेरी माया जो है ये गुण में ही है, तीनों गुण है इस माया में, और कठिन इससे पार जाना भी कठिन है, लेकिन बड़ा आसान तब हो जाता है माया से पार जाना, जब मनुष्य भगवान की शरण में चले जाते हैं, इसलिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। जो मनुष्य भगवान की गुणमयी माया तीनों गुण की स्वतंत्र सत्ता और नेता मानते हैं, उनके लिए इस माया से पार जाना बहुत कठिन है। समझिए कि देखो, जो गुणों की सत्ता को अलग मानते हैं, उनके लिए गुण ही सब कुछ है, इसलिए वे गुणों से पार नहीं जा पाते। ये गुणमयी माया है तो भगवान की मम माया दुरत्य, पर जीव इसे अपनी और अपने लिए मानकर बंध जाता है। क्या होता है, इस माया को अपना मान लेते हैं, ये घर मेरा है, ये बस्ते मेरे हैं, ये मेरा बेटा है, ये सब कुछ मेरा मेरा करने से हम माया से बंध जाते हैं और भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, इसलिए हम भगवान से दूर हो जाते हैं। श्लोक 15 नाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया प्रहित अज्ञान आसुरम भवम भावम आशीता। परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर गया है आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। भगवान यह भी बता देते कि भगवान की शरण में कौन नहीं जाना चाहता, जो बहुत ही भगवान की शरण में ना जाने वाले मनुष्य कौन होते हैं, जो बहुत पाप करते हैं और आसुर भाव का आश्रय लेते हैं और माया में बंधे होते हैं, वो उनको भगवान की आवश्यकता ही नहीं होती, वो भगवान के शरण में जाते ही नहीं है, इसलिए उनका कभी उद्धार भी नहीं होता है। भगवान की माया ने सबको बांध रखा है, फिर मनुष्य बेचारा क्या करे। भगवान की माया किसी को नहीं बांधती, मनुष्य ही भगवान की माया को अपनी और अपने लिए मान कर बांधता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, भगवान कहते मेरी माया को पार करना बहुत मुश्किल है, और फिर ये भी है कि भगवान की माया सबको बांध लेती है, तो फिर हम क्या करें भाई। तो भगवान क्या कहते हैं कि असली में देखा जाए तो भगवान की माया किसी को नहीं बांधती, हमारा मन ही इतना लालची है कि हम भगवान की ओर ना लगाकर मन को संसार के भोग विलास में लगाते हैं। श्लोक 16 चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आतु जिज्ञासु सुर्थी ज्ञानी च भरत शभव। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये चार प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरे शरण होते हैं। भगवान का भजन करना भगवान की शरण में जाना एक ही बात है, तो भगवान ने यहाँ चार प्रकार के भक्त बताए हैं। परंतु एक तो जिसको धन चाहिए, अर्थ दूसरा दुखी, तीसरा जिज्ञासु ये समझ जानने वाला कि भगवान है क्या, कैसा है, कहाँ है, और चौथा ज्ञानी भक्त जो केवल भगवान से प्रेम करता है। ये चार प्रकार के भक्त आम हमें देखने को इस संसार में मिलते हैं। हमें अपने आप में देखना चाहिए कि हम चारों में से कौन है, हम धन चाहते हैं या हम जब दुखी होते हैं तब भगवान को पुकारते हैं, या भगवान के बारे में हमारे मन में जिज्ञासा है, या हम भगवान से प्रेम करते हैं। इन चारों में हम कौन से हैं? अगर हम अपने आप को पहचान लेंगे कि हम भगवान से प्रेम करते हैं तो सचमुच ही भगवान की शरण में जाएंगे और भगवान हमारा उद्धार कर देंगे। अर्थात आत और जिज्ञासु तीनों में भगवान की मुख्यता तथा सम्मुखता रहती है। कौन कौन? जो धन चाहता है, जो दुखी और जो चाहता है भगवान कैसा है, ये कैसे हैं? इनमें भगवान है तो मुख्य और वो सम्मुख भी है, अर्थात कि भगवान से अपने धन की इच्छा पूरी करना चाहता है, और तो भगवान से अपना दुख मिटाना चाहता है, जिज्ञासु भगवान से अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता है। लेकिन चौथे प्रकार का भक्त जो प्रेमी भक्त है, जिसको हम ज्ञानी भक्त कहते हैं, वो क्या है? जब भक्त एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं चाहता, वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त होता है। तो हमने चार प्रकार के भक्त देखे, चारों में उत्तम भक्त कौन है? जो भगवान से प्रेम करता है, कुछ नहीं चाहता। तेषां ज्ञानिनि प्रयुक्त एक भक्ति विशिष्यते, यो हि ज्ञानिनो अत्यर्थ महं सचमं प्रिया। हमारे साथ का स्थान श्लोक है ये। मैं उन चार भक्तों में से मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी तथा प्रेमी भक्त जो श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, तो वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं तो मुझे चारों भक्त अच्छे लगते हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त कुछ नहीं चाहता, क्या चाहता है? भगवान का प्रेम। भगवान से प्रेम करता और बदले में क्या कहता है, भगवान को मुझे प्रेम दो। तो ऐसा भगवान कहते हैं कि सबसे उत्तम भक्त है, तो इसी को मैं चाहता हूँ। अठारहवा श्लोक है, उदारा सर्व एव ते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम आस्थित स ही युक्तात्मा माम मामे बानो उत्तमो माम गतिम। चारों ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, कारण कि वह मुझसे अभिन्न है। वो जिससे श्रेष्ठ दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसा मुझ में फिर स्थित है, वे भक्त प्रेमी भक्त है। आज मैं गीता का अध्याय अठारहवें श्लोक में विराम देती हूँ। अब हम स्वामी जी के बारे में कुछ और भक्त जिन्होंने गुरुदेव की तथा स्वामी जी की अनुभूतियाँ जो की है उनको पढ़ के सुनाती हूँ। निशा कौर हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी एक सुंदर हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी एक सुंदर जगह है, जहाँ महादेवी तीर्थ नदी के किनारे उपस्थित है, जो मेरे लिए एक आशीर्वाद साबित हुआ। जैसा कि अच्छी तरह से कहा गया है कि एक उच्च स्तर की शांति और आध्यात्मिकता प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, तो स्वामी जी महाराज व श्री गीता माम मेरी गुरु है। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं श्री महादेवी तीर्थ जाती हूँ, वहाँ मुझे आंतरिक शांति मिलती है तथा निष्काम सेवा करने की सीख भी मिलती है। श्री मां जी के स्नेह एवं आशीर्वाद से मुझे अपने जीवन में कई बाधाओं को दूर करने में मदद मिली है। मैंने भगवान को नहीं देखा लेकिन माता जी मेरे लिए भगवान बराबर है। निशा को आगे आइए, हंसा चौधरी। मैं हंसा चौधरी अपने परिवार से श्री माँ जी तथा संघ की शारद वाणी की करते करके 50वें अंक पर हार्दिक बधाई देती हूँ। मेरे पतिदेव स्वर्गीय श्री गोपिंद चौधरी गाया करने के सदस्य थे, मैं भी शारदा माँ सेवा संघ की सदस्य हूँ। मुझ पर तथा मेरे परिवार पर स्वामी जी की पूरी कृपा है। सन 1972 में स्वामी जी ने स्वयं हमारे घर में शारदा माँ सेवा संघ शाखा खोली थी। प्रतिमास यहाँ पर श्री राम चित मानस का पाठ होता था। प्रवीण श्री मां जी सायकाल हमारे घर आती थी, 5 से 6 घंटा सत्संग होता और श्री मां जी बच्चों को नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा देती थी। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे परिवार पर स्वामी जी व श्री मां का आशीर्वाद बना रहे। हंसा चौधरी। अगला है सल्ला चौधरी। मैं सल्ला चौधरी शारद वाणी के 50वें अंक के प्रकाशित होने पर श्री मां जी तथा शारदा मां सेवा संघ को हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं 2001 में पहली बार श्री मां देवी तीर्थ में श्री मां जी के संपर्क में आई। मेरी बेटी मोनिया बचपन से श्री मां देवी तीर्थ बाल गोपाल गायत्री केंद्र में जाया करती थी। इन दिनों वह मंदिर के बारे में बताया करती थी, परंतु मैं जाना कभी नहीं हुआ। क्यों भी था मुझे अपनी अरुणा शर्मा जी गुरु पूर्णिमा के दिन मंदिर अपने साथ ले कर मैंने कभी गीता पाठ रामायण अन्य पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया था। ये सब मैंने श्री मां जी के सानिध्य में सीखा। मेरी जिंदगी में यहाँ जुड़ने के बहुत बहुत बदलाव आए हैं, ये सब वहाँ जुड़ने से ही संभव हो सका है। अब मैं शिवानी धर सिंगा और की अनुभूति करती हूँ। यू आर इन मी Before I start writing, I would like to congratulate Shri Maanji, Kamal Bhaiji and the members of Sharda Maaseva Sangha on the 5th edition of Shardwani. Destiny wanted us to meet and I met you. Then I even did not know what is the meaning of Guru. You are who you are. You are the one who removed the darkness in my life. I found you in me when you yield to me the true meaning of life. Always wanted to be your Vivekananda until one day you made me realize that I am much better as myself. you the defects of my personality and help me attain bliss. You are the form of energy for me, which flows through me. You shape me like a sculpture, healing me bit by bit. You burn piece at a time. At times, you had to be tough on me. You never made any arbitrary promises. Rather, you were that layer in my life which only helped me alleviate for this burden we might have met when I was 6 years old. But I feel we have an internal blissful connection that has been running through ages in us, and it will just go on. No, just dharma. You also opened my eyes to karma theory. I have started practicing karma only because of you, because you taught me what selfless service actually means. You have that brilliance of sun which enlightens the whole world. You told me once that you become what you follow, and that is when I started following you. You taught me to be a noble character endowed with intelligence, having common mind. You taught me japa and tapa. I can say that after being with you, my results have become eightfold than ordinary. I have truly accepted you as my guru, as I follow what you say. I never did or will never doubt on you or path shown by you. You are my yoga and you are my sadhana. Sometimes I just feel you are me and I am you. Shivani Dhar, Singapore. अब मैं एक छोटा सा संस्मरण और सुनाने जा रही हूँ श्रीमती हीरा देवी। हीरा देवी के विषय में मैं आपको एक दो लाइन पहले बताना चाहती हूँ। मैं स्मय सिंह पर बताती रहती हूँ कि हीरा देवी मेरे पास स्कूल में मेरी छात्रा रह चुकी है, इसलिए मैं जब उन्हें देखती हूँ तो मुझे स्कूल याद आ जाता है, वो पाठशाला याद आ जाती है जहाँ मैं उन्हें पढ़ाती थी। हीरा देवी जी लिखते हैं, मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि शायद वाणी का 50वां अंक छपने जा रहा है। मेरा जन्म कुल्लू में हुआ। श्रीमान गीता जी ने 10th तथा 11th में मुझे इतिहास पढ़ाया है, जिसके बाद श्रीमान जी जेवीटी स्कूल सुल्तानपुर में अध्यापन के लिए चली गई। उसमें मेरे पति देव जेवीटी कर रहे थे। एक दिन मैं जब अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ मंदिर गई, तो वहाँ मैंने श्रीमान जी को गेरुआ वस्त्र में तथा स्वामी जी को छोटी सी कुटिया में बैठे देखा। उसमें समझ नहीं थी कि एक दिन यही मेरी गुरु होंगे। हम दोनों पति पत्नी का सौभाग्य रहा कि माँ जी हमारे स्कूल में के गुरु भी रहे और मंदिर आने के बाद अध्यात्मिक गुरु भी। जब मेरे पति का देहांत हुआ तो फिर माँ जी ने ज्ञान द्वारा मुझे जीने की राह दिखाई। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि श्री माँ जी का साथ एवं आशीर्वाद सदा मुझ पर बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय माता दी, गीता माँ।